हो जाए पूत कपूत मूंग छाती पर धड़ता, झूठ कहती है दुनिया बेटों बिन वंश नहीं चलता। ध्रुव पहला सुदामा ने भक्ति में नाम कमाया है, पर मीरा के औलाद नहीं सारे जग में नाम कमाया है। बोलो शंकर भगवान की। सजनों, भारत देश जति सतियों का देश है, धर्म का देश है। इस धरती का कण कण में संस्कार है, संस्कृति है। हर कण कण में, हर कदम कदम पर आपने सती और जति का जोड़ा मिल सके। इस प्रकार के एक सती हुई सावित्री सत्यवान के साथ में भी को ब्याह हुयो, तो ये सत्यवान और सावित्री की पावन कथा मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं, आनंद लीजिएगा। सालम देश के राजा थे धूम्रसेन, रानी थी सव्या, बूढ़ा वे चलिया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। भगवान का भगत है, भगवान ने हाथ जोड़ बोले, हे परमात्मा सब कुछ है बेटो नहीं। जब बूढ़ा कोई आई गयो तो आशा भी छूट गई, अब कहा को बेटो वैसे। मां को एक नौकर हो सेनापति जो मैंने प्राणों प्यारो व्या कर तो राजा चोड़ा राय, तो मन में राजा जी विचार करे का आपा चोड़ा राय ने सारो राजपाट सारी कूचा संभाला और आपा जंगल में चला चला और भगवान की भक्ति करा। जाने की तैयारी करी, कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म करोड़ा के बुढ़ापा में बेटो जन्म ले लियो। राजा की आस पड़गी, अठिन वो चोड़ा राय मन में विचार करो कि एक दिन ओ राजो आपने राज देवाने तैयार हो लेकिन अब नहीं देसी, तो एक काम करा भाई लड़को भी छोटो ही है, राजा रानी और लड़का ने खत्म कर दे और राज आप हासिल कर दे। मारने की सोच, 10-20 बीघा जान का पापी इंसान अपने मिला लियो, एक प्लान कर ली के राजा ने भी दिन आपने खत्म करनो। हर इंसान नमक आराम नहीं हुआ करे महाराज, वही लोग के मैंने एक दो आदमी अच्छा आदमी मन में विचार कर रहे, राजा को अन्न खाया नमक खाया, अगर राजो ही मर जासी तो आपन पाप झेलनो पड़ सी। तो महाराज रात के महीने जाओ रे राजा धूम्रत सेन ने बे सैनिक बोले, महाराज सुरंग बना दी और आप आपकी जान ने खतरो है, इन वास्ते इस सुरंग का रास्ता हूं आप जंगल में चले जाओ ताकि आप जीवित तो रह सको और ये बेटा को पालन पोषण कर जो, इन्हें बड़ो कर जो और एक दिन ओ अपने देश को राजा बन सी। सुरंग के रास्ता में राजा रानी और छोटो सोग कुंवर सत्यवान निकल गया, जंगल में चले गया। रात दिन एक ही याद करता, कदे यो बेटो राजा हो तो राज आज जंगल में पड़े है। दुख का दिन शुरू हो गया, आंखें रोता रोता दो ही जना आंधा वे गया। सत्यवान धीरे धीरे बड़ो हो, जंगल में लकड़ी काटा करतो और अपना बूढ़ा माँ बाप को पालन पोषण किया करतो। तो सत्यवान एक दिन गांव में जावे और एक लाला जी ने कहे, हे लाला ये मारा राजशाही कपड़ा गिरवी राख ले और एक लकड़ी और रस्सी मने दे दे ताकि मैं मारा अंधा माँ बाप को पोषण कर लू। तो लाला से कहने लगता है सत्यवान, आदमी गरीब लाला अरे दया भी कर दिए, दया भी कर दिए, अरे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए, गरीब लाला, आदमी गरीब लाला दया भी कर दीजिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लीजिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दीजिए, अरे टोटे में ये दुखियों के कपड़े गिरवी रख लीजिए, कपड़ा गिरवी रख लो आप। कभी हम राजा ते भूपाल, हो गए बिन पैसे कंगाल। हे लाला, कोई टाइम में मैं राजा होया करता, लेकिन आज गरीबी आएगी, भगवान कोप कर दियो, कंगाल वे गया। थे करोड़ों के लाल हम, करोड़ों के लाल हम मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। अरे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए। सबने पेट घर जी है बाड़े की, एक रस्सी और कुल्हाड़ी बाबा, रस्सी और कुल्हाड़ी की हाँ भी भर लिए, हाँ भी भर लिए। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे रख लिए। बोलो शंकर भगवान की। सत्यवान लाला को अपने हाल बताता है, लाला जी ये वस्त्र हमारे गिरवी रख लो और एक रस्सी और कुलाड़ी दे दो, मैं मेरे माँ बाप का पेट पालन कर लूं। सत्यवान कहने लगता है, कोई समय हम राजा थे, आज कंगाल हो गए, आज हमारे पास पैसा टका कुछ भी नहीं है, आप इतनी सी दया कर दो। लाला जी ने गिरवे रख लिए कपड़े। सत्यवान अपनी जिंदगी के हाल बताने लगता, हम कैसे आदमी थे। ओ सत्यवान माँ बापों के दुख, सत्यवान माँ बापों के दुख काटने वाले हो गए। अरे राजकरणिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। अरे राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए। अरे बिगड़ी हवा में माँ के जाइए भाई न्यारे हो जाते, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जाते।
विपत पड़ी में राज करणिया लकड़ हारे हो जाते। विपत पड़ी में राज करणिया लकड़ हारे हो जाते। अरे राज करणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए। राज करणिया बालक लकड़ी काटण वाले हो गए।
ए लाला जी, कोई समय में राजा थे और बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जाते और बिगड़ी हवा में मां के झाए भाई भी न्यारे हो जाते। आज समय बदल गयो, आज समय पलट्यो, आज मैंने राजू निकाल दिया, मारे माँ बाप रो रो अंधा वे गया। अब मैं जंगल में लकड़ी काट ले सू, अपनी विलाप सुनाता है सत्यवान। लाला का दिल पिघल जाता है। लाला कहता है बेटा ये तेरे कपड़े भी ले जा और तू ये रस्सी भी ले जा, कुल्हाड़ी भी ले जा, माँ बाप की सेवा कर। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है। इधर मगध देश का राजा था अश्वपति, उसके घर में एक सुंदर कन्या जन्म लेती है, सावित्री। सावित्री जब बड़ी हो जाती है तो पिता को चिंता लगती है, बेटी की शादी करनी है। अपने नौकर चाकर पुरोहितों को राजा कहने लगता है कि जाओ पूरी दुनिया में जहां भी सावित्री के जोड़ का कोई वर मिले उसको लगन टीका दे आओ। नौकर चाकर पूरे देश में घूम जाते लेकिन सावित्री के जोड़ का कहीं वर नहीं मिलता। तब सावित्री कहने लगती है पिताजी आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपना पति खुद ढूंढ लूंगी, चिंता मत करो पिताजी। सावित्री ओढ़ने पहनने की सारी चीजें ले लेती है, खाने का सामान ले लेती है, रथ में बैठ जाती है और रवाना हो जाती है। चलते चलते उस जंगल में आ जाती है जहां सत्यवान लकड़ी काट रहा था। सत्यवान को देखते ही सावित्री मोहित हो जाती है, मेरे जोड़ का पति यही है, मैं इसी को अपना पति मान चुकी हूं। तो सत्यवान को आवाज लगाती है सावित्री,
वो पेट से नीचे आ जा तेरे, अरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी, वो भर दे मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी। दे मांग में सिंदूर में तेरे चरणों की दासी, मांग में सिंदूर में तेरे चरणों की दासी।
सावित्री कहने लगती है लकड़ा हारे पेट से नीचे आजा मैं तेरे चरणों की दासी, अरे भर दे मांग में सिंदूर मैं तेरे दर्शन की प्यासी। मैं बड़ी दूर से आई हूं, एक राजा की राजकुमारी हूं, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूं और तुझे अपना पति मान चुकी हूं। सत्यवान कहता है कि एकदम जंगल में कौन कहां से शादी करने आता है, तू कहां से आई है। कहने लगा सत्यवान,
वो कौन कहां की रहने वाली, अरे बिया बान बन खंड में डोले एक ली के काम तेरा, बिया बान बन खंड में डोले एक ली के काम तेरा। उभर दे मांग में सिंदूर में तेरे चरणों की दासी, मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी।
सत्यवान कहने लगता है, कौन कहां की रहने वाली, बता के काम तेरा। अरे बिया बान बंड में डोले, एकली के काम तेरा है भाई। तू इतनी सुंदर राजकुमारी और अकेली जंगल में कहां ही कर रही है, चली जा क्यों? मैं एक गरीब आदमी हूं, थारो मारो जोड़ नहीं मिले सावित्री। सावित्री कहने लगती है, शहर गांव घर छोड़ दिया, बिया बान में आई। अरे मगध देश की रानी रहने वाली अशुपति की जाई, मगध देश के राजा अशुपति की बेटी हूं, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले सत्यवान। थारो नाम भी सहु शुरू और मारो नाम भी सहु शुरू, दोनों की राशि भी एक ही मिलेगी। श्याम सलोनी मृग नैनी या रूप की जड़ी, अरे बे माता ने किस फुर्सत में बही तुझे घड़ी। तू इतनी सुंदर है, मैं एक गरीब आदमी हूं और थारो मारो जोड़ नहीं मिले। तू राजघराने की रहने वाली है, मैं एक लखड़ारा, एक दिन तू छोड़कर मुझे चली जाएगी, क्योंकि मैं तेरी मांग पूरी नहीं कर पाऊंगा। सत्यवान बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री कहती है, मैं तुझे अपना पति मान चुकी हूं, मैं सती हूं। सती के केवल जिंदगी में एक ही पति होता है, अब तू मना करेगा तो भी मैं ऐसे रह लूंगी, लेकिन मैं तुझे पति मान चुकी हूं।
जति पुरुष के जगत में तो होती है कही नार, आ पतिवरता भी चुनती है जीवन में एक ही भरता।
ए सत्यवान, अरे जी प्रकार जति पुरुष के एक ही नार हुआ करे, भी प्रकार एक सती नार भी जिंदगी में एक ही भरता चुनती है। तू मना करेगा तो भी मैं तेरी झोपड़ी को रंग महल समझ लूंगी, फटे पुराने कपड़े पहन लूंगी, भूख प्यास सब सहन कर लूंगी, लेकिन तू मुझे पत्नी स्वीकार कर ले। सत्यवान कहने लगता है, सावित्री तेरी बात पर मुझे प्रेम बहुत आता है, तू कितनी भोली बनकर बात कर रही है। सावित्री तेरी बात का मने आवे घना प्रेम, अरे मात पिता के कहे बिना नहीं शादी का नियम है। सावित्री मारे अंधा माँ बाप है, और मैं के किया बगैर मैं शादी नहीं कर सकूं, अगर मारे माँ बाप हाँ भर ले तो मैं थोड़ा ब्याह करवाने राजी हूं। सत्यवान कहने लगता है, सावित्री कहती है, तेरे माता पिता को मैं राजी कर लूंगी, चल के। तो सत्यवान और सावित्री दोनों उस झोपड़ी में आते जहां अंधे माँ बाप बैठे होते हैं। वहां जाकर के सावित्री अपने सासू के पांव छूती है, कहने लगती है,
आ बेटे सत्यवान तेरे से।
जाते ही सत्यवान की आवाज सुनी, माँ बाप खुश हो गए, ये बेटा आज जल्दी आयो, बात कही है।
आ बेटे सत्यवान तेरे से, अरे आनंद काया मेरी, अरे सासु दे वरदान सावतरी बहु बने से तेरी, सासु दे वरदान सावतरी बहु बने से तेरी। अरे मन भी सासु अब तक देखो शादी करी है कोन्या, मन भी सासु जी अब तक तो शादी करी है कोन्या।
सासु दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी, ए सासु आज वरदान दे माता पे हाथ में आशीर्वाद दे, आज मैं थरी बहू बनने वास्ते आयो। इति सुनता ही सत्यवान की मां बोली, सत्यवान की बहू कहां से हुई सगाई कोन्या, आल ती सगाई नूर बिंदनी कटो आएगी क्यों, और फर्जी काम क्या नोस। सावित्री बोली, सासू जी मैं आलते बिना शादी कही हूं, मारी शादी नहीं हुई, मैंने सत्यवान पसंद है और मैं मगध देश का राजा सुपति की बेटी हूं। कौन कहां की रहने वाली, अरे कैसे नाम बाप का, मगध देश का सुपति जो समधी बनता आपका। हे मां बेटी स्वीकार करो। सजनों सत्यवान की मां कहने लगती है, बेटा तू पति तो मान लियो लेकिन तने ध्यान है सत्यवान की जिंदगी कान कट रही है, रात दिन रोया करे अपना राज ने अपने माता पिता ने दे करो सत्यवान रोया करे। कहने लगी मां,
ओ मेरे सत्यवान के साथ लाडली, अरे बहुत बुरे हैं फंदे, कदे लाभ कदे हानि ये मां सासु जगत के धंधे, कदे लाभ कदे हानि मां सासु ये जगत के धंधे। अरे कोड़ी बात कराने हट तू सुत बचना के बंदे, कोड़ी बात करे ना रे बेटो सुत बचना के बंदे। सासुदेवर दान सब तरी बहु बने से तेरी, सासुदेवर दान सब तरी बहु बने से तेरी।
मेरे सत्यवान के साथ लाडी बहुत बुरे हैं फंदे है भाई, सत्यवान बहुत गरीबी झेल रहे। सावित्री बोली मां जिंदगी में हानि लाभ गरीबी मेरी आया करे क्यों, इनको चिंता मत करो आप, मैं सत्यवान को पति मान चुकी, इस गरीब के साथ मेरी जिंदगी पूरी कर लूंगी, लेकिन मैं पति भरता हूं मैं दूसरा भरतार नहीं सुनूंगी। जब इतनी बात कहती है तो सासु वरदान आशीर्वाद दे देती, जा बेटी को थारो सुहाग अमर हो। इतना सुनकर के सावित्री अपने घर पे चली जाती है, पंडित जी घर पे जाती है और रात दिन सत्यवान के सपने देखती, जिस प्रकार हमारे गोनू भैया देखते हैं, रात दिन सत्यवान के सपने देखती है, उसी की याद में खोई रहती है। एक दिन नारद जी महाराज आए, नारद जी आके कहने लगे, हे सावित्री जिसे तू अपना पति मान रही है वो सिर्फ एक साल का मेहमान है, एक साल के बाद में सत्यवान खत्म हो जाएगा और तू विधवा हो जाएगी, उस पति से शादी की बात छोड़ दे। क्यों नारद जी से सावित्री कहने लगती है, हे नारद जी मैंने पति धारण कर लिया सत्यवान को, अब एक दिन जियो चाहे दो दिन जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्यवान ही मेरा पहला और आखिरी पति है। राजा भी खूब समझाता है, हे बेटा नारद जी खुद कह रहा है एक साल को सत्यवान और तू बावली क्यों मेरी है। बोले नहीं पिताजी, अपनी बेटी के प्रेम को देख करके पतिव्रता धर्म को देख कर राजा का मन पिघल जाता है। राजा कहने लगता है धूमधाम से शादी होती है। राजा पूरी सामग्री लेकर पंडित पुरोहितों के साथ जंगल में पहुंच जाता है, मंडप सजा देता है और उस गरीब के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देता है। एक बार जयकार लगाओ, बोलो विष्णु भगवान की। सत्यवान और सावित्री की शादी जंगल में हो जाती है, जंगल में मंगल हो जाता है जिस प्रकार आज हो रहा है। सत्यवान लकड़ी काटने जाता है, सावित्री अपनी अंगुलियों पे एक एक दिन गिन रही है, क्योंकि मुझे पता था सत्यवान एक साल की जिंदगी जिएगा फिर मर जाएगा। रात दिन वो दिन गिनती है, आज एक दिन कम हो गया, कल दो दिन कम हो गए, छह महीने बीत गए, सावित्री ने अन्न पानी छोड़ दिया, क्योंकि अब सावित्री के विधवा होने के दिन नजदीक आ गए। सावित्री सूख कर कांटा हो गई। सत्यवान कहने लगता है, सावित्री मैंने कहा था तू गरीब के घर में नहीं रह पाएगी, तू बहुत थक गई है। सावित्री कहने लगती है, पति देव कोई बात नहीं, मैं थक जाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन आप ही मेरे पति हो और आप ही मेरे परमेश्वर हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उस समय वो दिन आ जाता है जब सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे। सावित्री को पता था कि आज वो दिन आ गया है, आज मेरे पति का आखिरी दिन है। सत्यवान रोज की तरह लकड़ी लेकर के, रस्सी लेकर के लकड़ियां काटने जाता है, आज सावित्री उसके पीछे पीछे जा रही है। सत्यवान बोला, सावित्री तू क्यों आ रही है? बोले, पतिदेव कोई बात नहीं, मैं आपके दर्शनों की भूखी हूं। सत्यवान पेट पर चढ़ जाता है, लकड़ियां काटने लगता है। थोड़ी देर में सावित्री पेड़ के नीचे बैठ जाती है, थोड़ी देर में सत्यवान के हाथ पांव ढीले पड़ने लगते हैं। वो समय घड़ी आ गई जब सत्यवान के प्राण निकलने वाले। सावित्री से कहने लगता है सत्यवान, ए सावित्री, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, सिर में चक्कर आ रहा है। कहने लगा सत्यवान,
सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चावे से, अरे मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सायावे से, काया में मेरे भड़क लागरी चक्कर सायावे से। भड़क लागरी चक्कर सायावे से, अरे मेरा जीव गणा दुख पावे माथा फाटण ने हो रहा से, जीव गणा दुख पावे माथा फाटण ने हो रहा से।
सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, हे सावित्री मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राणों को कोई खींच रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी लकड़ी को मेरे कुल्हाड़ी को कोई छीन करके मुझे मार देना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सावित्री ने कहा, पति देव चिंता मत करो, आप एक काम करो, पेड़ से नीचे आ जाओ, तब तक यमदूत पूरे पेड़ को घेर लेते हैं और सावित्री के सामने सत्यवान के प्राणों के लोम जाते हैं। सत्यवान जैसे तैसे नीचे आता है और सत्यवान को सावित्री अपनी गोद में बिठा लेती है। बोले, पति देव मेरे पैर पर आपका सिर डाल करके आप सो जाओ, चिंता मत करो। सत्यवान को, सत्यवान के जैसे प्राण निकले जा रहे हैं, चारों तरफ घेरा घाल देते हैं यमदूत। सावित्री कहने लगती है, पति देव अभी समय बाकी है, मैं पतिव्रता नार हूं और ऐसे कोई मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकता। सावित्री को सत्यवान समझाने लगता है, सावित्री ऐसा लगता है जैसे मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। सावित्री, सावित्री ने विचार कर लिया, अब सत्यवान की प्राण बचना मुश्किल है।
वो पेट से नीचे उतरा पति क्यों, अरे फीका पड़ गया चेहरा, अरे तेरे दर्द ने मैं जानू सू नहीं किसी ने बेरा, तेरे दर्द ने मैं जानू सू नहीं किसी ने बेरा। अरे मेरे गोडे पर सिर धर सोचा कांत बीच लो तेरा, मेरे गोडे पर सिर धर सो जा गात बीच लो तेरा अरे सावतरी मेरे प्राण काट कोई ले जाना चावे से सावतरी मेरे प्राण काट कोई ले जाना चावे से
बोल सच्चे दरबार की सत्यवान से सावतरी कहती है पति पेट से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा अरे तेरे दर्द ने मैं जानू सू नहीं किसी ने बेरा हे पति देव आपकी बीमारी काई हुई को मने ध्यान है कि और किसी को पता नहीं है। सावित्री नारद जी की बात याद करती है। नारद जी ने समझाया था लेकिन मैं समझी नहीं। आज पति चला जाएगा मैं विधवा हो जाऊंगी। यम के दूत जो थे वो भड़क भड़क करके सत्यवान पर गिर रहे हैं प्राण निकालना चाह रहे हैं। सावित्री अडिग बेटी अपने पति को लेकर के कोई हिला नहीं सकता जब तक सावित्री है। उस समय में यमदूत घेरा देकर खड़े हो जाते हैं। सावित्री हाथ जोड़कर कहते हैं यमदूतों मेरे पति को लेने आयो। बोले तेरे पति का समय पूरा हो गया जाना पड़ेगा इसको। बोले एक काम करो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है अगर मेरे पति को ले जाना चाहते हो मुझे भी साथ ले चलो क्योंकि एक सती नार अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। यमदूत कहने लगते हैं जिसका बुलावा आता है उसी को जाना पड़ता है। सावित्री मैं हम तुझे नहीं ले जा सकते। सावित्री कहने लगते अगर मेरे पति को मुझे नहीं ले जा सकते तो मेरे पति को भी तुम नहीं ले जा सकते। यमदूतों को क्रोध आ जाता है। बिजली की तरह तड़क तड़क करके वो यमदूत सत्यवान पर गिर पड़ते हैं प्राण निकालना चाहते हैं। सावित्री क्रोधित हो जाती है और अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर देती है। मोटा व सती आग बरसा वो शुरू कर दिया। यमदूत घबरा गया। यमदूत घबरा बेटा हूं भाग गया साहब। जार धर्मराज जी ने यमराज जी ने बोला हे यमराज जी सावित्री के विकराल रूप को देख करके यमदूत वहां से डरकर भाग जाते हैं। सावित्री अपनी शर्त बता दिए या तो पति के प्राण रखूंगी या मैं खुद भी मर जाऊंगी लेकिन मेरे पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। यमदूत यमराज जी को जाग करके ये सारी खबर बताते हैं। यमराज जी बोले रे मरदूत थे एक आदमी को प्राण नहीं ला सके एक औरत की मजाल का ही जो था कहूं प्राण नहीं ले सके थे डूब जाओ कटी मर। यमदूत बोले महाराज आप क्यों नहीं चले जाते आप खुद ही जाओ एक बार देखो तो सही। तो यमराज जी विकराल रूप धारण करके सत्यवान के प्राण लेने आते और क्या सावित्री प्राण बचाते अपने पति के। यमराज जी ने आते आंधी बरसात की शुरुआत कर दी तूफान शुरू कर दिया ताकि सावित्री डर के भाग जाए और मैं सत्यवान के प्राण लेके आ जाऊं। लेकिन इतने आंधी बरसात में भी सावित्री पत्थर की तरह डिग बैठी थी नहीं हिली अपनी जगह से। यमराज जी आए और कहने लगे सावित्री इस भ्रम जाल को तोड़। अरे जिसको जो संसार में आया उसको एक दिन जाना पड़ेगा। सावित्री तू ये पति मोह को छोड़ दे तेरे पति का समय खत्म हो गया। बोले महाराज मैंने कब मना किया मेरे पति को ले जाओ लेकिन मेरी भी इच्छा है कि आप मुझे भी साथ में लेकर जाओ। जब तक आप मुझे नहीं ले जाओगे मैं मेरे पति के प्राण नहीं निकालने दूंगी। तो सावित्री से यमराज कहने लगते हैं
ओ यमराज आए सावित्री यमराज आए सावित्री अरे तज दे अपना स्थान अब लेने पति के प्राण सावित्री लेने पति के प्राण लेने पति के प्राण सावित्री लेने पति के प्राण ओ यमराज आए सावित्री अरे लेने पति के प्राण सब तरी लेने पति के प्राण लेने पति के प्राण सब तरी लेने पति के प्राण
यमराज जी कहने लगते हैं सावित्री इस पति को मोको छोड़ और तेरे पति के प्राण लेने दे राम जी का नाम रट ताकि तेरे पति की मोक्ष हो जाए। झटपट सावित्री कहने लगी पति देव की सेवा करना ही मेरा धर्म है मैं सती हूं मेरे पति को नहीं छोड़ सकती आप मुझे मारकर मेरे पति को ले जा सकते मेरे सत्य धर्म को देख करके फैसला कर दो यमराज जी। यमराज ने खूब कोशिश की लेकिन सावित्री अड़िग रही सावित्री नहीं हिली अपनी जगह से। मेरे सजनों विद्वानों ने गाया कि सती का धर्म नहीं जो छोटे सात पति का है यमराज जी मैं कैसे छोड़ सकते हैं। उस समय यमराज ने एक चाल चली बोले सावित्री तेरे पति के मैं प्राण बख्श दूंगा लेकिन वो जो सामने फूल है एक माया को फूल बना दिया भी माया का फूल ने अगर भी फूल ने तोड़ मने लार दे दे तो थारो पति का प्राण मैं बख्श दूं। सावित्री बोली महाराज बात पर वचन पर कायम रहिजो आप यानी हो जाएगा मैं फूल लेने जाऊं और मारे पति का प्राण ले रहा आप चले जाओ। उस समय सावित्री फूल तोड़ने के लिए जाती है और पीछे से यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के भाग जाता है वो फूल भी गायब हो जाता है। सावित्री जब वापस आती है तो अपने पति की लाश को देखती है सत्यवान के प्राण निकल गए। यमराज ने धोखा कर दिया पति के प्राण लेके चला गया। अब सावित्री ने मन में विचार किया क्यों न कोशिश की जाए। सावित्री अपने आप को दोष दे रही है हे सावित्री अब रोने से क्या फायदा जब नारद जी ने तेरे को बता दिया था उसके बाद भी तू क्यों रो रही है तेरे पति के प्राण जाना निश्चित था फिर भी रो रही है। तो सावित्री कहने लगी
जो भाग लिखी सो होवे अरे क्यों नींद चिता ने खोवे रोवे बन में अकेली नार सावित्री छोड़ चल्या बरतार रोवे बन में अकेली नार सावित्री छोड़ चल्या बरतार लेकर चलिया प्राण पति के दया न आई मन में बिना हंस के हंसणी न रही अकेली वन में बिना हंस के हंसणी न रहे अकेली वन में क्यों मुखड़ा पति तो मोड़ा आधे अंग की साखण से क्यों मुखड़ा पति तो मोड़ा यमराज अन्यायी यहां करना था मेरा तोड़ा
मिलाप करने लगती है और कहने लगती है
सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी सारस वाड़ी जोड़ी ने बिछड़ा जी भगवान सारसवाड़ी जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान
बोलो सच्ची दरबार की सावित्री कहने लगी आधे अंग की सातन तूने कैसे मुकड़ा मोड़ा अरे यमराज अन्याय ने आकर नाता मेरा तोड़ा है यमराज आप तो न्याय के देवता हो फिर भी अन्याय कर दिया आपने मेरे से मुकड़ा मोड़ लिया पति को लेकर दौड़ पड़े आप सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान हे भगवान आज हंस और हंसनी की जोड़ी बिछड़ा दी आप जगड़ में अकेली छोड़ दी उस समय सब इधर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के भाग रहे हैं पीछे से सावित्री ने काले का रंडी चंडी का अखंडी चंडी का रूप धारण कर लिया विकराल रूप धारण कर लिया और आकाश मार्ग से उड़ चली चलती जा रही है यमराज भी इधर यमलोक के पास में पहुंचते हैं और सावित्री दौड़ करके यमराज के सामने खड़ी हो जाती है ए यमराज जी आप धोखेबाज हो धोखा किया आपने मेरे साथ में मुझे फूल के बहाने दूर भेज दिया और मेरे पति के प्राण निकाल लिए यमराज जी फिर समझाते तेरे हाथ जोड़ता हूं सावित्री संसार का नियम मत बदल अगर ऐसा होगा मैं तेरे पति के प्राण तुझे वापस दे दूंगा तो संसार में आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम बदल जाएगा सावित्री तू चली जा सावित्री कहती है वन में अकेली कैसे रहूंगी अरे दुख सुख की बातें मैं जाकर किसको कहूंगी हे यमराज जी मारे दुख सुख की बातें मैं कुड़ने जा कैसे क्यों इस बियावान जंगल में मैं अकेली नहीं रह सकती आप एक काम करो मेरे पति को भी ले जाओ और मुझे भी ले जाओ बोले नहीं ले जा सकता सावित्री ने वहीं आग फूंकना शुरू कर दिया आग फूंक रही है आग उगल रही है रणचंडी का रूप धारण कर लिया यमराज जी घबरा गए घबरा करके यमराज जी ने कहा तो कोई वरदान मांग ले तेरे पति के प्राणों के सिवा कोई और वरदान मांग ले वो वरदान मैं तेरे को दे सकता हूं लेकिन तेरे पति के प्राण में वापस नहीं दे सकता हे सावित्री अब मरी हुई लाश में मैं प्राण भी वापस नहीं डाल सकता तू चली जा वचन देता हूं तेरे को मैं अगले जन्म में तुम्हारी जोड़ी वापस बनाऊंगा अगले जन्म में फिर तुम्हारा पति मैं सत्यवान को ही बनाऊंगा लेकिन अभी मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता आवा जून जगत की लागी ये संसार जाड़ का अरे जिसकी उम्र पूरी होली कैसे काम टाड़गा जिसकी उम्र पूरी हो गई उसको जाना पड़ेगा खूब समझाते हैं सावित्री टस से मस नहीं होती आप कुछ भी कहो लेकिन मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती पति प्राण के सिवा सब कुछ मिले मानो तो यकीन अरे मांगो तो वरदान मांग ले वचन एक दो तीन तीन वचन तू मांग सकते अपने पति के प्राणों के सिवा सावित्री बुद्धिमान थी देखिए आप किस प्रकार यमराज को वचनों में लेती और किस प्रकार मांगती
ओ तीन वचन भरवा के सती ने तीन वचन भरवा के सती ने अरे शुरू कर दिए अब तो बयान सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान जी
मांगती है सावित्री
मेरे सास ससुर जी अंधे हैं वो सास ससुर मेरे अंधे हैं कुछ उनका भी ख्याल करो
अरे चोड़ा राय ने मार के मेरे ससुरे कहा तुम राज करो चोड़ा राय ने मार के मेरे
ससुरे का तुम राज करो।
तीन वचन भरवा के सती ने शुरू किए बयान। सावित्री के यमराज जी जल्दी दो वरदान। हे यमराज जी, अगर वचन देना है, वरदान देना है तो सबसे पहला वरदान मांगती हूं, मेरे सास ससुर अंधे उनको आंखें दो आप। और चोड़ाराई ने जो अन्याय किया मेरे राज, मेरे सास ससुर का राजपाट छीना, उसको मार करके मेरा राज, सास ससुर को फिर से राजा बनाओ। पिंड छुड़ाने के लिए यमराज ने आनंद फानन में बोल दिया था, खास तो जा बेटी, तेरी मनसा पूरी हो जाएगी, तेरे सास ससुर को आंखें मिल जाएगी, चोड़ाराई भी मर जाएगा और तेरे सास ससुर को राज भी मिल जाएगा। सावित्री ने कहा, यमराज जी दूसरा वरदान,
ओ जैसे घुण लकड़ी ने खावे, जैसे घुण लकड़ी ने खावे, अरे फिक्र गात ने खा जागी, जो मांगू सो मिले तेरे दिल को तसल्ली आ जागी, जो मांगू वो मिलो तो मेरे दिल को तसल्ली आ जागी।
अरे सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान।
दूसरा वरदान मांगती है सावित्री, जैसे घुण लकड़ी को खाया करे वो फिकर गात ने खा जाएगी, अरे जो मांगू सो मिले तो दिल को तसल्ली आ जाएगी। हे यमराज जी, अगर आप दे सको तो मेरे पिताजी के पुत्र नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरे दो भाई हो, मैं दो भाइयों का मुंह देखना चाहती हूँ, यमराज जी अगर आप दे सको तो दो। पिंड छुड़ाने के लिए यमराज ने फिर कहा कि तेरे को दो भाई दिए जा, तेरे दो भाई होंगे। सावित्री ने कहा, आखिरी वरदान है, सोच समझ कर मांगना पड़ेगा। सावित्री ने कहा, हे यमराज जी अब आखिरी वचन मांगती हूँ, मुझे मना मत करना। बोले भाई तू जल्दी मांग और मुझे सत्यवान के प्राण ले जाने दे।
अरे आज तलक के पाप किए वो, आज तलक के पाप किए वो, अरे सारे पल में दूर करो, जो मांगू सो मिले मने थे क्यों ज्यादा मजबूर करो, जो मांगू सो मिले मने थे क्यों ज्यादा मजबूर करो।
अरे सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान।
सावित्री कहने लगी, हे यमराज जी आज तक जाने अनजाने में मेरे से, मेरे पति से, मेरे सास ससुर से, मेरे माँ बाप से कोई पाप हो गए उनको आप दूर करो, जा कर दिए। हे यमराज जी मैं एक निसंतान हूं, निपुत्री हूं, मुझे एक पुत्र रत्न का वरदान भी दो। यमराज भूल गए इस बात को कि पुत्र कैसे होगा। यमराज ने आनंद फानन में अपना पिंड छुड़ाने के लिए सावित्री को कह दिया, जा तेरे एक पुत्र हो जाएगा। सावित्री ने झट से पकड़ लिया यमराज को, हे यमराज जी पुत्र का पुत्र रत्न का वरदान तो दे दिया, पति को लेके जा रहे हो, पुत्र कैसे होगा।
जति सती की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना,
अरे सती के पुत्र होते ना भरतार के बिना। जति सती की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना, अरे सती के पुत्र होते नहीं भरतार के बिना। हे अमराज जी, मेरे पति को आप लेके जा रहे, बिना बीज के पौधा नहीं उग सकता। मेरे पति को आप लेके जा रहे हैं, इसके प्राण लेके जा रहे हैं, और आप मुझे पुत्र रत्न का वरदान भी दे रहे हैं, कैसे पति होगा। यमराज ने माथा पकड़ लिया, ये मैंने क्या बोल दिया, जबान से मेरे खुद के हाथ कटा लिए। यमराज जी बैठ जाते हैं नीचे, ले सती तेरे पति को ले जा, क्योंकि जो मुंह से निकल गया वो शब्द वापस नहीं आया करता है। तीर कमान से, बात जबान से, ये चीजें कभी वापस नहीं आया करती है। यमराज के मुंह से निकल गया, जा तुझे पुत्रवती का वरदान देता हूं। सती ने कहा, मेरे पति के प्राण नहीं बचेंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। मैं कोई गलियों की औरत तो हूं नहीं जो मेरे पति के बिना पुत्र हो जाएगा। यमराज ने पिंड छुड़ाया और सावित्री अपने पति के प्राण लेकर के वापस आ गई। सास ससुर के पास जाती है और पति धर्म की, सतीत्व की, पतिव्रता धर्म की जीत होती है। एक बार जयकार लगाए,
बोलो शंकर भगवान की।
अरे सती का धर्म नहीं जो छोड़े सात पति का, सती का
धर्म नहीं छोड़े सात पति का।
सच्चे दरबार की, भगत और भगवान।